तारापरी और सोनलपरी जादुई लॉकेट की मदद से सफ़ेद रंग का दरवाज़ा ढूंढ लिया। सफ़ेद दरवाज़ा सामने आते ही पूरी हवेली कांप उठी। करिश्मा और अमन दोनों चौंक गए। अमन हवेली से बाहर गया ये देखने के लिए कि उसका बनाया हुआ जादुई घेरा सही सलामत है या नहीं। लेकिन जैसे ही अमन बाहर गया, उसने देखा कि पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा पड़ा था। जिस वक्त आसमान में खूबसूरत चांद सितारे होने चाहिए थे, उस वक्त वहां बड़े बड़े काले बादल छाए हुए थे। अमन उन काले बादलों को देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ लोग हवेली के मेन गेट के सामने से भागते हुए दिखाई दिए। अमन उनके पास गया और बोला, क्या हुआ, आप सब लोग क्यों भाग रहे हैं? तब उनमें से एक आदमी ने कहा, वो साहब, पड़ोस के एक बंद पड़े घर में अचानक सिलेंडर फट गया है, सब लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। ओह, अमन ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जाकर उसने करिश्मा जी को सिलेंडर फटने के बारे में बता दिया। करिश्मा जी ने भी राहत की सांस ली और बोली, शायद उसी सिलेंडर की वजह से हवेली दहल उठी थी। अमन बेटा, तुम चलो और जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं तारापरी ने अपने जादुई लॉकेट द्वारा उस सफ़ेद दरवाजे को खोल दिया था और वो सोनलपरी के साथ उस सफ़ेद कमरे में चली गईं। वो दोनों हैरानी से चारों ओर देख रही थीं। ये कमरा एकदम सफ़ेद था और उसमें रखा हुआ सारा सामान सफ़ेद रंग का था। इतना ही नहीं, उस कमरे की साज सज्जा सब कुछ एकदम उजला उजला सफ़ेद था और ये इतना बड़ा था कि अगर कोई सामान्य इंसान चलना शुरू करे तो वो अपने गाँव से शहर पहुँच सकता था। तारापरी ने सोनलपरी से कहा, तुम अपनी उड़ने वाली जादुई शक्ति का प्रयोग करो और मुझे भी अपने साथ उड़ाओ, क्योंकि मैं अभी अपने मतलब के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। सोनलपरी ने उसकी बात मानी और तारापरी को लेकर उड़ने वदी। तारापरी अपना लॉकेट हाथ में लेकर उस सुरंग जैसे सफ़ेद कमरे में घूमने लगी। लगभग 20 मिनट उड़ने के बाद एक जगह जाकर उस लॉकेट का रंग नीले से सफ़ेद पड़ गया। तब जाकर वे दोनों वहां रुकी। सोनलपरी बोली, आखिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ये बताएगी कि अमन असल में कौन है? तारापरी ने कहा, तुम अभी स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। तारापरी ने बड़े ही ध्यान से देखा, वहाँ एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा सफ़ेद रंग का एक बॉक्स रखा हुआ था। तारापरी ने बड़ी सावधानी से उस बॉक्स पर अपना जादुई लॉकेट छुआ दिया और देखते ही देखते वो बॉक्स एक छोटी से सफ़ेद बौने में बदल गया। तारापरी ने अपना जादुई लॉकेट वापस अपने गले में धारण कर लिया। वो जादुई बौना तारापरी को देखकर सलाम करने लगा और बोला, रानी परी की लाडली बेटी तारापरी का पृथ्वीलोक पर स्वागत है। अगर आपने मुझे जगाया है तो जरूर आपकी मुलाकात बरगद के पेड़ पर समाधि लिए हुए महाराज जिन से हुई होगी और उनके कहने पर ही आप यहाँ आ पहुँची हो। सोनलपरी हैरानी से सब सुन रही थी। तारापरी ने उस सफ़ेद बौने के सलाम का जवाब दिया और बोली, आप ठीक कह रहे हैं, महाराज जिन के कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। तब सफ़ेद बौना बोला, तो बताइए हुस्न की मालिका, ये नाचीज़ आपके किस प्रकार मदद कर सकता है? तारापरी ने कहा, मैं अमन के बारे में जानना चाहती हूँ। वो बौना थोड़ी देर सोचने लगा और बोला, आप मुझे अपना लॉकेट दिखाइए एक बार। तारापरी ने वो लॉकेट उस बौने के हाथ में थमा दिया। तारापरी का लॉकेट लेकर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और कुछ देर बाद बोला, तारापरी, हमने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है। तारापरी, जिस इंसान के लिए आप यहाँ आई हैं वो इंसान आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो अमन है या कोई और, इसका पता आपको स्वयं लगाना होगा। तारापरी बोली, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं? आखिर क्यों मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ जब कुलदेवता के कहे अनुसार अमन के मिलते ही ये लॉकेट जगमगाने लगा था? लेकिन कुलदेवता ने नेक दिल इंसान कहा था, पर ये तो एक खतरनाक जिन निकला। आप कृपा करके मेरी मदद करो और उस नेक दिल इंसान तक मुझे पहुंचा दो। तारापरी ने अपने दोनों हाथ उस बौने के सामने जोड़ दिए थे। तब उस बौने को उस पर दया आ गई और वो तारापरी का जादुई लॉकेट लेकर उस पर कुछ पढ़ने लगा। देखते ही देखते वो लॉकेट एक बड़ी ही खूबसूरत अंगूठी में बदल गया। तारापरी बेहद हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या किया आपने? इस लॉकेट में असीमित शक्तियां थीं और आपने इसे एक अंगूठी बना दिया। वो बौना बोला, आप फिक्र न करें और मेरी बात ध्यान से सुने, ये एक तिलिस्मी अंगूठी है और इस अंगूठी को पहनकर अगर आप किसी नेक दिल इंसान को छूओगी तो आपकी ये अंगूठी उसी समय वापस आपके लॉकेट का रूप ले लेगी और नेक दिल इंसान को छूकर उस लॉकेट की शक्तियां 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये सारी बातें सुनते ही तारापरी की आंखें खुशी से चमक उठी थी और सोनलपरी भी खुशी के मारे तारापरी से लिपट गई थी। तब वो बौना बोला, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं और यहाँ जिन्नों की फौज जमा होने वाली है। तारापरी और सोनलपरी एक दूसरे को देखने लगी। तब सोनलपरी बोली, बातों ही बातों में तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि अब हम लोग अदृश्य भी नहीं है, एक पहर कब का बीत चुका था। तारापरी बोली, हमें जल्दी से एक बार फिर अदृश्य वाली शक्ति का प्रयोग करना होगा। सोनलपरी ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने आप को उन्होंने सामान्य पाया, वे अदृश्य नहीं हुई थी। सोनलपरी और तारापरी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी क्योंकि किसी भी वक्त वहां कोई आ सकता था और उन्हें देख सकता था। तारापरी ने देखा कि वो सफ़ेद बौना वहां से जाने की तैयारी में था और वो जिस बॉक्स में था उस बॉक्स का ढक्कन बंद होने ही वाला था कि तभी तारापरी ने आगे बढ़कर उसमें अपना हाथ डाल दिया।
वो बौना तारापरी की इस हरकत से गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से में उस बॉक्स से बाहर निकला और तारापरी पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? लगता है तुमसे हमने प्रेम से बात कर ली तो तुम्हें लगा हम कोई कमजोर हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि तुम्हारे पूरे परी लोग को भस्म कर सकते हैं। तब तारापरी ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तारापरी को देखकर सोनल परी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। तारापरी बोली, हमें माफ कर दीजिए बौने महाराज, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। सोनल परी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों को शर्मिंदा देखकर बौना कुछ नर्म पड़ा और बोला, बोलो किस लिए फिर से याद किया तुम दोनों ने मुझे? तब सोनल परी ने कहा, बौना मैं बताती हूँ, हम दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन हम अदृश्य ही नहीं हो पा रही हैं। और तभी वो बौना उन्हें बीच में रोकते हुए बोला, ये सफेद कमरा जिन्नों का दावत घर है, यहाँ तुम लोगों की कोई जादुई शक्ति काम नहीं करेगी। तारापरी बोली, तो हम क्या करें बौना महाराज? तब उस बौने ने सफेद मोतियों की दो मालाएं उन्हें दी और बोला, ये दो मालाएं जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी तब तक तुम दोनों को कोई भी जिन या इंसान नहीं देख पाएगा। तारापरी ने उस बौने महाराज का शुक्रिया अदा किया और फिर वे अपने बॉक्स में वापस चले गए। दूसरी ओर अमन अपनी माँ के साथ तहखाने में पहुंच चुका था और मोर के निशान वाली चाबी द्वारा सफेद दरवाजा खोलने लगा था, लेकिन वहीं तारापरी और सोनल परी वो सफेद मोतियों की माला हाथ में लिए ही खड़ी थी। और जैसे ही उन्हें सफेद दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, दोनों ने जल्दी से आनन फानन में वो मालाएं पहन ली थी। अमन और करिश्मा जी अंदर आ चुके थे और आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। तारापरी ने अमन को देखा और देखती रह गई। अमन ने बिल्कुल सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और उस सादे से लुक में वो आज कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था।
तभी तारापरी ने अपनी सोच झटक दी और सोचने लगी कि अब वो दोनों उसी सफेद कमरे में फंस कर रह गई थी। तारापरी मन ही मन सोनल परी से बोली, अब क्या करें, हम लोग तो फंस गए हैं यहाँ, इन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, अब हम लोग कैसे निकले? सोनल परी बोली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आखिर ये लोग करेंगे क्या यहाँ पर, और अगर हम इन लोगों के सामने आ गए तो ये लोग हमें जिंदा निकल लेंगे। तारापरी बोली, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप यहीं खड़े होकर सब कुछ देखें। अगर हमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो पक्का हम लोग पकड़े जाएंगे, और इन मालाओं द्वारा हम जब तक चाहें अदृश्य रह सकते हैं, सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। तारापरी ने सोनल परी के साथ वहीं रुकने का निश्चय कर लिया था और वे दोनों उसी बॉक्स के पास जाकर बैठ गई थीं। तभी करिश्मा जी की आवाज़ आई, बेटा बावर्चियों को हुक्म दो कि उन्होंने जितना भी खाना पकाया है वो सबका सब यहाँ पेश कर दिया जाए। अमन बोला, ठीक है मॉम। तारापरी और सोनल परी को लगा कि शायद उन बावर्चियों को हुक्म देने अमन बाहर जाएगा और तब वे दोनों वहां से निकल जाएंगी, लेकिन अमन बाहर जाने के बजाय उस सफ़ेद कमरे में बीचों बीच जो सफ़ेद कालीन सी बिछी हुई थी उस पर बैठ गया। तारापरी और सोनल परी एक दूसरे को हैरत से देखने लगी और देखते ही देखते अमन कुछ पढ़ने लगा था। अभी कुछ देर हुई थी कि तभी वे सातों बावर्ची वहां आ पहुंचे थे और उन सबके हाथों में अलग अलग थाल थे। अमन ने उन्हें हुक्म दिया कि वे अपना पकाया हुआ सारा खाना यहाँ लाकर लगा दे। उन्होंने वैसा ही किया। दरअसल अमन ने सफ़ेद कमरे में आने के लिए उन लोगों को मंत्र बाया था, क्योंकि बिना अमन की परमिशन के वे लोग तो क्या कोई भी उस सफ़ेद कमरे में नहीं आ सकता था। सो अब अमन ने उन्हें परमिशन दे दी थी तो वे सातों एक साथ गायब होते और एक साथ आते, और हर बार उनके हाथ में एक अलग थाल होता। ये सब करते हुए उन्हें एक घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था और उन्होंने उसे एक घंटे के अंदर अंदर उस सुरंग जैसे कमरे को खाने से भर दिया था। वहाँ ऐसा कोई खाना नहीं था जो वहाँ उस समय मौजूद ना हो। तारापरी और सोनल परी हैरानी से सब कुछ देख रही थीं।